आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, पिछले वर्ष 2016 में हमने अपनी ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट सीरीज की शुरुआत करते हुए उस्मान चौहान, जी हाँ, जो कैनबरा बेस्ड हमारे नीति विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट की दर आने वाले वर्षों में कम होगी या बढ़ेगी। उनका जवाब था, अगर सही से नीति बनाई जाए तो कम जरूर होगी। लेकिन ब्रदरहुड ऑफ सेंट लॉरेंस की नई आई रिपोर्ट में, जिसका नाम है जेनरेशन स्टॉल्ड, यंग अंडर एम्प्लॉयड एंड लिविंग प्रिकेरियसली इन ऑस्ट्रेलिया, में ये दर और बढ़ गई है। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया अमित जी।
पिछले वर्ष आपने कुछ भविष्यवाणियां की थी अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेके, थोड़ा सा उनको गिनाएंगे?
जी, मैंने 2016 में कहा था कि अगर पॉलिसी ठीक ना हो तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी यंगस्टर्स के लिए, और सगीर रोजगारी अंडर एम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ेगी, और इसका इम्पैक्ट खास तौर पे इमिग्रेंट्स और न्यू अराइवल्स और उनके बच्चों पे ज्यादा होगा। और बदकिस्मतन, अनफॉर्चुनेटली, अब 2017 में हम देख सकते हैं तो वो प्रेडिक्शंस अब सही नजर आ रही हैं। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक अब अंडर एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट यानी अंडर यूटिलाइजेशन वो अब 30% से ज्यादा है, यानी कि आपके एक तिहाई नौजवान जो है वो किसी किस्म के मसले में है रोजगार की निस्बत।
जी, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 5 में से 1 युवा, उसे पूरे घंटे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्चुअल काम के घंटे होते हैं, जो आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए एक्चुअली, और जो एक युवक चाहता है काम करना, उसके बीच में जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती और तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, खासतौर पे जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं और पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर जो है वो बड़े सुस्त लोग हैं और मेहनत करना नहीं चाहते। लेकिन हमें सर्वे डेटा से पता लगता है कि असल में वो ज्यादा काम करना चाहते हैं और उनको वो घंटे दिए नहीं जाते अपनी नौकरियों में, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा गैप है, यानी कि अगर एक यंगस्टर जो है वो 20 घंटे काम करने के लिए तैयार है अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो असल में उसको 10 घंटे सिर्फ मिलते हैं काम करने को, खासतौर पर ये सर्विसेज की जॉब्स हैं, फास्ट फूड, रिटेल वगैरह, इनमें। तो दर हकीकत नौजवान जो है, इमिग्रेंट और लोकल, ये बहुत मेहनती हैं और काम करना चाहते हैं, इनको सिर्फ घंटे ऑफर नहीं किए जा रहे, और ये एक बुनियादी मसला है।
जी उस्मान जी, यहाँ पर अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि छात्रों को या युवकों को जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे 2008 में, जहां 61% था, वो 2014 में गिरकर 53% रह गया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाकई कम हुए हैं?
जी, मेरे डेटा के मुताबिक और इस रिपोर्ट में भी ये अर्ज किया गया है कि जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का निजाम था वो अब ज्यादा कम हो रहा है, और आपके नंबर सही हैं कि तकरीबन 61% से अब 53 हो चुका है, यानी कि अब एक किस्म की टेम्पररी नेचर, एक अनसर्टेंटी, एक गैर इस्तेहकाम आ चुका है। जो बच्चे काम कर रहे थे, यंगस्टर्स काम कर रहे थे, उनको अब एक परमानेंट बेसिस पे नहीं दिया जा रहा, सिर्फ घंटे से घंटे, तो उनके लिए फिर इसके एक ज़हनी असरात होते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि उन्हें ये नहीं पता कि कब निकाल दिया जाए, बेनिफिट्स भी कम मिलते हैं इसमें, और फिर जॉब की कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं होती जब परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉय नहीं किया जाता। तो आपकी बात दुरुस्त है।
उस्मान जी, चौंकाने वाली बात ये भी है साथ में कि जो कैजुअल वर्कर है उसके घंटे भी गिरते जा रहे हैं।
सही कह रहे हैं आप, जो कैजुअल वर्क है उसमें भी टेम्पररी नेचर आ रहा है, यानी कि अब जॉब मार्केट जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाते बनाते एम्प्लॉयर्स बहुत एडवांटेजेस ले रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं, खासतौर पर इमिग्रेंट, यंग इमिग्रेंट के चिल्ड्रन जो हैं, इनको एक टेम्पररी बेसिस पे रखा जाता है, तो वो हर वक्त एक नई जॉब की तलाश में रहते हैं। ये किस्म की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उनके लिए, और जब वो जॉब मिलती भी है तो ये नहीं पता कि कितनी देर तक मिलेगी, तो इस पर प्रोडक्टिविटी के भी असरात होते हैं कैजुअल लेवल पे भी। आप सही कह रहे हैं।
हमने बात शुरू की थी सरकार की नीति से लेकर, आपको लगता है कि पिछले एक साल में सरकार ने कुछ सकारात्मक या कुछ नकारात्मक कदम उठाए हैं जिसकी वजह से ये बेहाली बढ़ती जा रही है?
جی بدقسمتاً سیاسی حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی آج کل بل پاس نہیں ہو سک رہا امپلائمنٹ کے نظریے سے, اور گورنمنٹ کی ویسے ہی جو سٹانسز ہیں وہ بڑے فلمزی ہیں, ان میں کوئی استحکام نہیں, اور پالیسی کے ایشوز پہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, جو انہوں نے پالیسیز اپنانے کی کوشش کی ہیں وہ میسر نہیں ہیں. خاص طور پہ انہوں نے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے, اور اس انٹرنشپ پروگرام میں انہوں نے یہ فوکس کیا ہے کہ ینگسٹرس کو کوئی بھی جاب مل جائے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ویج جو ہے وہ اتنی کم ہے انالیسس کے مطابق کہ صرف ایک $4 پر آور کے متبادل ایک چیز ملے گی. تو یہ اتنی کم ویج ہے کہ پھر ینگسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ پڑھ ہی لیں, کچھ اور ہی کر لیں, کیونکہ وہ پالیسی جو ہے اتنی کمزور ہے. یعنی کہ جو انہوں نے پالیسیز کے سولوشن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی وہ ان افیکٹو ہے بدقسمت.
عثمان جی, آپ کو لگتا ہے کہ ایک سمے آئے گا کہ آسٹریلیائی ورکر جو ہے, آسٹریلیائی بلو کالر جابس نہیں, وائٹ کالر جابس نہیں, نارمل ورکر, ٹریڈیز وغیرہ بھی اب باہر جا کر کام ڈھونڈنا شروع کریں گے ایشیائی ملکوں میں؟
کیوں نہیں, خاص طور پہ جن کی امیگرنٹ بیک گراؤنڈ ہے اور کنیکشنز ہیں, فیملی ٹائز ہیں دوسرے ممالک میں, وہ کہیں گے کہ یار یہاں پر تو ہماری کریئر ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی, ہم دن بدن جو ہے روزگار کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں, اور ایک ڈے ٹو ڈے مینٹیلٹی ہے تو ہماری ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی. کسی اور ملک میں جا کے, خاص طور پہ اگر ایک ہوم کنٹری ہے تو وہاں پہ ہم زیادہ اسٹیبلش بھی ہو سکتے ہیں, اور یہاں پر جو ہم نے سیکھے ہیں سکلز وہ ہم وہاں بہتر اپلائی کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں جائیں گے باہر. آپ کی بات صحیح ہے, ہو سکتا ہے.
عثمان, جو اس رپورٹ میں بات کی گئی وہ تھی پچھلے 40 ورشوں کی, اگلے 40 ورشوں تک اگر میں بات کروں آپ سے کہ آسٹریلیا کی کیا نیتی ہونی چاہیے, کیا سدھار ہونے چاہیے, کم سے کم شبدوں میں کیا کہیں گے؟
بہت اچھا سوال ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ دو بیسک میکرو اکنامک فورسز ہیں جس کے بارے میں بات کی ہی نہیں جاتی. پہلی بات یہ ہے کہ آٹومیشن ہے, یعنی کہ روبوٹس اور الگوریتھمز وہ کام کریں گے جو آج کل ینگسٹرز کرتے ہیں, تو وہ تو جابز ہوں گی نہیں. اور دوسری ہے آف شورنگ. یہاں پر آپ کو اگر $20 ویج دینی پڑتی ہے ایک خاص کام کے لیے, تو ابراڈ آپ کو $5 دینے پڑتے ہیں, تو وہ چیزیں باہر جا رہی ہیں. تو اس لیے اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں, اور ینگسٹرز اس میں مارے جائیں گے. اگلے 40 سال میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا.
عثمان, ایس بی ایس ہندی میں بات کرنے کے لیے, اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد.
آپ کا بھی بہت شکریہ عامر جی.
ایس بی ایس ریڈیو سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد. ہمارا پورا کاریکرم آپ کیسے سنیں اس کے لیے sbs.com.au/hindi پر جائیں.